તારીખ 7/3/1996 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 609 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું મહાવીરજીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 14
પત્રાંક 609 108 પત્ર કે શેષ અંશ છોડ દિયા હૈ ઇસલિયે એ નિયમત કે किस किस प्रकार के प्रतिपादन होते हैं, धर्म के विषय में कैसे कैसे बोध देते हैं, ऐसे कुछ प्रश्न उठाए हैं। शेष 9 पत्र है, उसमें मुमुक्षु जीव को सत्संग का महत्व कितना होना चाहिए, उस महत्व को दर्शाने वाला ये पत्र है। श्रीमद जी के करीब करीब सभी वचनामृतों में, पत्रों में इस बात को उन्होंने बहुत महत्व दिया है और वो इनके अनुभव का विषय रहा है हमेशा। कहने की आवश्यकता नहीं है, अभिप्राय से सभी ज्ञानियों का अभिप्राय एक ही होता है। कहने की शैली अलग अलग होती है, वो अपनी अपनी होती है और विषय कोई पसंद करते हैं, कोई अलग विषय पसंद करते हैं, कोई अलग विषय पसंद करते हैं। हरेक ज्ञानियों के उदय अलग अलग होते हैं। इस तरह से अनेक प्रकार से भिन्नता दिखने पर भी आत्मकल्याण के विषय में सभी ज्ञानियों का अभिप्राय एक ही होता है। यहां इस पत्र में सत्संग का विषय चलेगा और ये मुमुक्षु के लिए बहुत आवश्यक और प्रयोजनभूत विषय है अपनी भूमिका के कारण से। पत्र का प्रारंभ कुछ अलग ढंग से उन्होंने कहा किया है कि मुमुक्षु का ध्येय तो लक्ष्य तो मोक्ष पाने का है। ये मोक्ष क्या है इसकी परिभाषा प्रथम पंक्ति में की है। सहज स्वरूप से जीव की स्थिति होना उसे श्री वितराग मोक्ष कहते हैं। मोक्ष की परिभाषा क्या कि जैसा जीव का मूल स्वरूप है, जीव का सहज स्वरूप है, स्वाभाविक कृत्रिम स्वरूप है, वैसे उनकी दशा हो जाए, स्थिति मैंने वैसे ही दशा हो जाए, ऐसी दशा को जिनेन्द्र परमात्मा ने मोक्ष नाम दिया है। मोक्ष की संज्ञा बोले हैं क्योंकि जीव के स्वरूप में कोई प्रकार का बंधन नहीं है। अवस्था में बंधन है और मोक्ष भी अवस्था का होता है। जहां बंधन है वहां से छुटकारा होता है। जीव का सहज स्वरूप है वो तो अभिद स्पष्ट है, वो बंधा हुआ कभी नहीं है। तो जब मोक्ष होता है तो क्या होता है कि जैसा मूल स्वरूप है वैसे ही दशा प्रकट हो जाती है, उसको मोक्ष कहने में आता है क्योंकि बंध का अभाव हो गया। मोक्ष में तो बंध पूर्वक उसका अभाव होना उसी को मोक्ष कहते हैं। ये हुई आगम विवेक्षा। अध्यात्म के अपेक्षा में तो जैसा अध्यात्म तत्व अपना मूल स्वरूप है वैसे ही दशा हो जाना, उसको कहते हैं मोक्ष। इसलिए कहते हैं कि सहज स्वरूप से जीव रहित नहीं है, अपना सहज स्वरूप से सहित ही है, उससे रहित तो है ही नहीं। जीव तो अपना सहज स्वरूप से अनादि अनंत है, परंतु यह सहज स्वरूप का मात्र भान जीव को नहीं है। अवस्था में क्या स्थिति रही कि अपना मूल स्वरूप का यह भान नहीं है। संसार में जीव सारी दुनिया की पंचायत तो करेगा, पड़ोसी से लेकर के जहां भी जाएगा परलक्ष होने से दूसरे का ख्याल करेगा, यहां भी बैठेगा तो कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे खाना खा रहा है, कौन कैसे बैठ रहा है, कौन कहां देख रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो देखेगा। ये अपना स्वरूप का ख्याल नहीं करता, बाकी सब कुछ करता है। यही आदत हो गई है जीव की, जो जीव को नुकसानकारक है, दुखदायक है, अशांति को पैदा करने वाली है। रूही भाव परिभ्रमण है जिसका फल द्रव्य परिभ्रमण है। भाव परिभ्रमण कारण है, द्रव्य परिभ्रमण इसका फल है। जो भाव से भ्रमण करता है तो द्रव्य से अवश्य अवश्य भ्रमण करना ही पड़ेगा। तो काम तो उतना ही करना है, मात्र अपना स्वरूप का भान करना। कितना मात्र भान करने की बात है, और एक अपेक्षा से वही भान होना, यो भान होना, वही सहज स्वरूप से स्थिति हो गई इनकी। क्योंकि सहज स्वरूप से तो स्थिति है ही, सहज स्वरूप से रहित तो नहीं है। भान हो गया तो मैं तो सहज स्वरूप हूं, वही इसकी स्थिति हो गई। क्योंकि भान अधूरा होता नहीं, भान अधूरा मतलब थोड़ा भान हो, थोड़ा विभान पना हो, ऐसा नहीं होता। भान होने से श्रद्धान साथ में है, तो श्रद्धान अधूरा होता नहीं। और श्रद्धान हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, तो दृष्टि अपेक्षा से वो कृतकृत हो गया, कुछ करना नहीं रहा। जिसको अपना आत्म स्वरूप का भान होता है उनको अपने अपना स्वरूप कृतकृत मालूम पड़ता है। अब आगे मुझे क्या करना है वो समस्या उनको नहीं रहती। क्यों? कि ये भान वाली अवस्था के कारण से अवस्था में जो भी कमी है, क्षतियां हैं, वो तो मिटने के लिए ऑटोमेटिक परिणमन चालू हो जाएगा। क्योंकि भान के साथ पुरुषार्थ रहता है, तो पुरुषार्थ स्वयं स्वतः काम करने लग गया तो अवस्था का जो सुधार है बाकी का वो सहज होने लगता है। परंतु दृष्टि अपेक्षा से तो सहज स्वरूप से स्थिति हो गई, कुछ करना बाकी नहीं रहा। क्यों? कि दृष्टि ने अपना अस्तित्व जहां त्रिकाल अस्तित्व स्वभाव था उसको संभाल लिया। पहले अनित्य द्रव्य और अनित्य भाव में दृष्टि जाती थी तो उसका कोई ठिकाना नहीं था। अनित्य भाव विनश्वर है तो खुद ही अपने भाव मरण को अनुभव करता रहता था। अब नित्य स्वरूप में शाश्वत पद में जहां शाश्वत अस्तित्व स्वभाव भी है उसको संभाल लिया, उसको ग्रहण, उसका ग्रहण हो गया तो एक न्याय से वो कृतकृत हो गया कि मेरे स्वरूप में क्या करने का है। मैं तो मेरे स्वरूप से अनादि अनंत परिपूर्ण हूं ही, उसमें कुछ करने का सवाल है ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं है कि कुछ करें। अगर ऐसी कोई गुंजाइश होती तो उसको पूर्ण पद कह नहीं सकते, लेकिन वो तो स्वरूप से ही पूर्ण है। इसलिए जीव को भान होना आवश्यक है और अनादि से जीव को अपना खुद का ही भान नहीं है। क्यों नहीं है? कि संग के योग से वह जीव सहज स्थिति को बुला हुआ है। जो भी संग है दूसरे पदार्थ का, इसका योग मैंने उसमें वो जोड़ता है, खुद ही जोड़ता है। मैं शरीर वाला, मैं ऐसा ऐसा हूं, अनेक प्रकार का संग वाला हूं ऐसी कल्पना करता है। ऐसा शरीर वाला, ऐसा कुटुंब वाला, ऐसा इज्जत वाला, ऐसे ऐसे साधन संपन्न वाला। इसी योग से यह जीव अपनी सहज स्थिति को भुला हुआ है और इस प्रकार के संग के योग की निवृत्ति होने से सहज स्वरूप का अपरोक्ष भान प्रकट होता है। कोई जीव अपना उपयोग को संयोगिक पदार्थ से उठा ले, उपयोग जाए नहीं, पर संग में उपयोग जाए नहीं, संग का योग उपयोग को हो ही नहीं, तो क्या होगा कि अपने सहज स्वरूप का प्रत्यक्ष भान हो जाएगा। अपरोक्ष मैंने प्रत्यक्ष भान प्रकट हो ही जाएगा, उपयोग स्वरूप में जाएगा या उपयोग में रह जाएगा। जब उपयोग प्रसंग में जाएगा नहीं तो उपयोग में रह जाएगा तो नहीं जाएगा, कब नहीं जाएगा तो उपयोग में रहेगा तब नहीं जाएगा। जब उपयोग में रहेगा तो अपना सहज स्वरूप का भान प्रकट हो जाएगा। ऐसा होने के लिए इसीलिए ही सौरव तीर्थंकर आदि ज्ञानियों ने असंगपना ही सर्वोत्कृष्ट कहा है। उपयोग पर का संग नहीं करे इसका नाम असंगपना है। आत्मा अपना सहज स्वरूप से तो असंग चैतन्य ही है। चैतन्य में किसी का संग यानी मिलावट हो ही नहीं सकते। निगोद में अपनी अवस्था में उत्पन्न ऐसे प्रचुर कषाय कलंक के साथ रहना हुआ, फिर भी जो सहज चैतन्य स्वभाव है वो असंग ही असंग रहा। वो प्रचुर कषाय का स्पर्श उसको नहीं हो सका। ध्येय का निमित्त निमित्त संबंध भी ज्ञान विशेष के साथ है, ज्ञान सामान्य के साथ तो नहीं। अवस्था में भी इसकी पहुंच मर्यादित है। ज्ञान ज्ञेय का कुछ करे और ज्ञेय ज्ञान का कुछ करे, ये तो वस्तु के स्वरूप में बिल्कुल है ही नहीं। कर्ता कर्म संबंध तो है नहीं। अब जो ज्ञाता ज्ञेय संबंध है वो भी ज्ञान विशेष के एक ज्ञान के बहिरंग के साथ है, बाह्य अंग के साथ है, ज्ञान के अंतरंग के साथ तो है ही नहीं। जो ज्ञान सामान्य है, वेदन रूप है, उसके साथ तो ज्ञेय का कोई संपर्क ही नहीं है। उसका प्रतिबिंब वहां नहीं जो लगता। तो सामर्थ्य रूप जो त्रिकालिक पारिणामिक भाव है वो तो काफी दूर है, वो तो नित्य है और ये तो अनित्य है। ज्ञान की अवस्था तो अनित्य है, अनित्य से नित्य बहुत दूर है। कितना दूर है? बहुत दूर है। अतः नियम सार के आरतोष गाथा के बाद का जो कलश है उसमें आता है कि सभी प्रकार के अनित्य भावों से जो अत्यंत दूर है, क्या कत्न कितना लिया है, अत्यंत दूर है, ऐसा जो सहज स्वरूप है वो असंग तत्व है, किसी से संग नहीं करता और सहज स्वरूपाकार उपयोग हो जाए तो ये परिणमन का असंग बना है। और ये ऐसी असंग दशा है, वही सर्वोत्कृष्ट दशा है, ऐसा तीर्थंकर आदि सभी ज्ञानियों ने सम्मत किया है कि ऐसा जो असंगपना है वो सर्वोत्कृष्ट दशा है, कि जिसके लिए सभी आत्मसाधन कहा है, वही दशा होने के लिए। यही कारण से जितने भी धर्म साधन है, आत्म साधन है, वो तो असंग दशा बनाने के लिए कहा है, दूसरा कोई हेतु नहीं है। जैसे तैसे भी उपयोग स्वरूप में आ जाए और बाहर भटके नहीं, यही उपयोग का आचरण है, ये परिणमन है, वो आचरण का अधिकार है। हम समझते हैं, विश्वास करते हैं, अगर वो सही है तो परिणमन आए बिना नहीं। श्रद्धा ज्ञान आचरण को पैदा करने वाली चीज है। कोई कहे कि हमको श्रद्धा ज्ञान है लेकिन परिणमन नहीं आता है, हमारा आचरण नहीं हो पाता है, ये बन ही नहीं सकता। इसमें ताकत है, श्रद्धा ज्ञान में स्वरूपाचरण की ताकत है, जो सर्वोत्कृष्ट आचरण है। एक और जगह लिया है कृपालुदेव ने, श्रीमद जी ने एक और जगह लिखा है कि उत्कृष्ट में उत्कृष्ट तप, उत्कृष्ट में उत्कृष्ट व्रत, उत्कृष्ट में उत्कृष्ट जप आदि जो भी संयम, उत्कृष्ट में उत्कृष्ट संयम वो जिसमें समाविष्ट होता है, ऐसा शुद्धोपयोग को मैं नमस्कार करता हूं। क्या लिखते हैं? उत्कृष्ट में उत्कृष्ट व्रत, उत्कृष्ट में उत्कृष्ट ताप, उत्कृष्ट में उत्कृष्ट संयम आदि जिसमें समाविष्ट है, ऐसा शुद्धोपयोग को मैं नमस्कार करता हूं। कितना आदर करते हैं शुद्धोपयोग को, क्योंकि यही सर्वोत्कृष्ट है और सभी व्रताधिक जो भी है वो साधन कई कब कहे जाते हैं कि ऐसी असंग दशा शुद्धोपयोग की दशा हुए उसके लिए तो वो कहे हैं, व्रत व्रत के लिए नहीं कहा, व्रत शुद्धोपयोग कराने के लिए कहा है। स्वर्ग जिनागम में कहे हुए वचन सभी समस्त जिनागम में कहे हुए वचन एकमात्र असंगपना में समाते हैं। गाओ, सभी जिनागम के सभी वचन एक असंगपने में आ जाते हैं। अगर जो असंग हो गया तो उसने सभी जिनागम का कार्य कर लिया। मेरे 12 अंग का सार क्या है कि 12 अंग का सार है असंग तत्व में असंग रूप असंग हो जाना, यही 12 अंग का सार है। क्योंकि ऐसा होने के लिए ही ये सभी वचन कहे गए हैं, ये असंग होने के लिए ये सभी वचन कहे गए हैं। जिनागम में एक परमाणु से लेकर के सौर ब्रह्मांड की रचना का वर्णन आया है। हमारी जिनागम में केवल ज्ञान अनुसार वाणी होने से केवल ज्ञान में जो जो भी भाषित हुआ और जो भी वचन गोचर हुआ वो वाणी गोचर हुआ और गणधर आदि महान आचार्यों ने उसे ग्रंथारोह किया। तो उसमें एक परमाणु से लेकर के 14 ब्रह्मांड की बात आई है। एक परमाणु के अनंत गुण है वो भी जिनागम बोलता है और 14 ब्रह्मांड के जितने भी कर्म के फल भोगने योग्य भोग्य स्थान है असंख्य प्रकार के विभाव जो है इनके भोग्य स्थान भी ये 14 ब्रह्मांड में है वो भी वर्णन जिनागम में आते हैं। क्यों ऐसी बात कही कि ये बात भी असंगपना होने के लिए कही है, किस लिए कही है? जीव असंग दशा में आ जाए इसके लिए वो बात कही है, दूसरा कोई हेतु नहीं है। एक परमाणु से लेकर 14 ब्रह्मांड के और मेषोन्मेष से लेकर के शैलेशी अवस्था पर्यंत के सर्व क्रिया, एक आंख का टिंकारा होता है बहुत सूक्ष्म क्रिया हुई नहीं, शरीर की जो भी क्रियाएं हैं मन वचन की काया की क्रिया है उसमें आंख का टिंकारा सहज होता रहता है। लेकिन ध्यानस्थ अवस्था में वो टिंकारे थम जाते हैं, जिसको ध्यान लगता हो उनको ये सब मालूम पड़ता है। तो उनकी जो क्रिया है स्थिरत्व क्रिया, शरीर तो स्थिर हो ही जाता है लेकिन आंख जो सबसे चंचल अवयव है शरीर के अंग उपांग में सबसे चंचलता कहाँ है? आंख में है। एक सेकंड में कहीं भी कहीं चले जाता है उपयोग, वो भी स्थिर हो जाती है, इसके टिमकारे भी स्थिर हो जाते हैं। यहां से लेकर के ध्यान में शैलेशी अवस्था 12वां गुण स्थान का शुक्ल ध्यान लगता है, ये सभी क्रियाएं जो वर्णनी है ये वही एक असंगता होने के लिए ही वर्णन किया है। शैल मैंने पर्वत, शैलेश मैंने बड़ा पर्वत, बड़ा पर्वत हिलता नहीं, मेरे को शैलेश कहते हैं। क्या मेरू है ना, सभी पर्वतों में सबसे बड़ा मेरू है, तो उसको कहते हैं शैलेश, स्थिर रहता है, हिलता नहीं कभी, ऐसी अचलित अवस्था हो जाए उसको शैलेश अवस्था कहते हैं। और वार्मी गुण स्थान में यथाक्षात चारित्र होता है, तो होते हैं कि जो हिलता नहीं है। तो एक मेषों में मैंने आंख के पलकारे तिमकारे होते हैं, वहां से इतनी क्रिया से लेकर के हमारे जिनागम में शैलेश अवस्था यथाख्यात चारित्र का वर्णन आया है, वही एक असंगता समझाने के लिए आया है कि असंग दशा क्या होती है। उपयोग अंदर में स्थिर होता है, असंग तत्व के साथ वो स्वरूपाकार हो जाता है, वो समझाने के लिए ये ध्यान की बात भी इसीलिए कही है, आचरण की बात भी इसीलिए कही है। ऐसा सर्व भावों से असंगपना होना, ये सर्व से दुष्कर में दुष्कर साधन है, ये कोई मामूली चीज नहीं है। कुछ मिनटों के लिए बैठ जाना और देखना कि मन की गति कितनी चंचलता से काम कर रही है। इस रूप में स्थिर होना, असंग होना, ये कोई मामूली काम नहीं है। समों से उपयोग को हटा लेना, ये दुष्कर से दुष्कर साधन है। जी लगी नहीं सकता, ठीक बात है। अनुभूति के हुए बिना ऐसा ध्यान लगता नहीं है। ये असंग दशा का दूसरा नाम अनुभूति भी है, उसको अनुभूति भी कहते हैं। और निराश्रय रूप से सिद्ध होना, वो तो अत्यंत दुष्कर है। निराश्रय मैंने क्या, किस बिना सत्संग कोई मुमुक्षु ऐसी अनुभूति को प्राप्त करे, ऐसा बन सकता नहीं है। निराश्रय रूप से सिद्ध होना अत्यंत दुष्कर है, ऐसा विचार करके श्री तीर्थंकर ने सत्संग को उसका आधार कहा है। ऐसा असंगपना होने का आधार मैंने कारण, आधारभूत कारण एक सत्संग ही है, दूसरा कोई साधन नहीं है। धर्म साधनों में भी सत्संग जैसा कोई उत्कृष्ट साधन नहीं है, ऐसा तीर्थंकर आदि सर्व ज्ञानियों ने अपने अनुभव से कहा है। शिविर लगी है, वो क्या है, क्या नाम दिया है इसको, तो नाम ही ऐसा दिया है, भगवान शिविर नाम नहीं दिया है, निज कल्याणार्थ सत्संग महोत्सव या सत्संग समारोह। क्यों, कि यहां कोई उपदेश देने को बैठ जाए ये उचित नहीं लगता, इसलिए उपदेशात्मक टोन में इस गड्ढे पे बैठ करके बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उपदेश का गुणस्थान ही छठवें गुणस्थान से प्रारंभ होता है और उत्कृष्ट गुणस्थान तो तेरहवां गुणस्थान है उपदेश का। चतुर्थ गुणस्थान पंचम गुणस्थान वाले ज्ञानी जरूर है, उनको ज्ञान है, धर्म ध्यान है, अपना निज स्वरूप को देखा है, इसलिए दर्शा सकते हैं लेकिन उपदेश तो देते हैं नहीं। क्योंकि उपदेश देना ये तो निर्ग्रंथ महात्माओं का कार्य है, और वो निर्ग्रंथ होकर के उपदेश देते हैं। इसलिए इसके पहले सत्संग किया जाता है। सिद्धि तो वो दशा आते ही वो असंग दशा है। छठे गुणस्थान से मुख्य रूप से असंग दशा चलती है, क्योंकि वो जंगल में रहते हैं, किसी के संग में बाहर में भी नहीं रहते, और अंदर में भी उनके परिणाम कहीं इधर उधर लगते हैं। निम्न क्षण क्षण में वो असंग तत्व में चले जाते हैं। इसलिए इसके पहले सत्संग किया जाता है, और असंग दशा होने के लिए यही एकमात्र सर्वोत्कृष्ट साधन है। बात नहीं है क्या मैंने लिखा है, श्री तीर्थंकर ने विचार करके ये बात कही है। मैंने ऐसे ही ऊपर ऊपर से अदर से बात नहीं कही, इसके पीछे विवेक है कि ऐसा ही होगा तभी असंग दशा प्राप्त होगी। ऐसा विचार करके श्री तीर्थंकर ने सत्संग को भी उसका आधार कहा है कि जो सत्संग के योग से संयोग स्वरूप भूत ऐसा असंगपना जीव को उत्पन्न होता है। इस विषय को अधिक स्पष्ट करें तो हमें वास्तविकता में जाना पड़ेगा कि हमारे अगल बगल में वास्तविक स्थिति क्या है। अगर उपयोग सत्संग में नहीं लगे तो उपयोग लगेगा कहाँ? अगर उपयोग सत्संग में नहीं लगाए तो उपयोग लगेगा कहाँ? कि हमारे चारों ओर असत्संग से हम घिरे हुए हैं। कैसे? असत्संग से घिरे हुए हैं। चाहे घर जाओ, चाहे बाजार जाओ, और आजकल तो मंदिर जाओ तो भी यही हालत है कि वहां भी दुनिया के पंचायत के सिवा और कुछ सुनने का नहीं मिलता। आज 25 आदमी इकट्ठे होते हैं और बीच में यह हो कि चर्चा चल जाती है कि मैं ऐसा तो ऐसा, वो ऐसा, वो वैसा, यही चलता है। मैं तू यह वह यही अच्छा असत्संग है, और असत्संग से हम घिरे हुए हैं। अगर सत्संग नहीं करेंगे तो असत्संग में तो आ पड़ेंगे ही, और इससे ज्यादा ये हो जाएगा कि असत्संग फिर आगे बढ़ करके कुसंग में चला जाएगा, और जीव की योग्यता कहो या अयोग्यता कहो, ये संग का संस्कार लिए बिना रहता होती है। जैसा संग है वैसा रंग उसको चढ़ जाता है। जो उपादान की योग्यता ही यही है कि वो संग का रंग चढ़े बिना नहीं रहता, तो जीव को चाहिए कि उसे क्या करना, उसका विवेक उसको होना चाहिए। इसलिए ज्ञानियों ने तीर्थंकर आदि ज्ञानियों ने ऐसा नाम लिया है, सिर्फ ज्ञानियों का नाम नहीं लिया। तीर्थंकर आदि ने सत्संग करने किसी भी उपदेश दिया है सत्संग का, सत्संग करो वरना असत्संग में तुम बह जाओगे। श्री तीर्थंकर ने सत्संग का उसका सत्संग को उसका आधार कहा है। कि जिस सत्संग के योग से, सत्संग भी कैसा होना चाहिए, कि जिस सत्संग के योग से संयोग स्वरूप भूत ऐसा असंगपना जीव को उत्पन्न होता है। सत्संग करो तो वैसा करो कि जिसके योग से असंगपना संयोग स्वरूपाकार स्वरूप भूत ऐसा असंगपना जीव को उत्पन्न होगा ऐसा सत्संग करो। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं भी पांच आदमी बैठे और धर्म चर्चा करे इसका नाम सत्संग नहीं है। सत्संग के बहाने कहीं असत्संग नहीं हो रहा है, वो भी हमें इस काल में तो ध्यान रखना पड़ेगा। सत्संग के बनने में असत्संग हो जाता है, जहां प्रयोजनभूत बात पर वजन नहीं दिया जाता, शास्त्रों के भी अप्रयोजनभूत बात की चर्चाएं चलती रहती है, जिस चर्चा से हमारी भूमिका से कोई लेना देना या संबंध हो गई नहीं। हाँ, कहेंगे कि हम तो शुक्र धर्म की चर्चा करते हैं, लेकिन धर्म ग्रंथ का तो प्रारंभ का भी ठिकाना नहीं हो, मुमुक्षुता का भी ठिकाना नहीं हो, और चर्चा करें शुक्र धर्म की, तो उससे तो कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला है नहीं। तो वहां सत्संग के बजाय असत्संग हो जाएगा, क्योंकि फिर प्रयोजनभूत बात पर लक्ष्य रहेगा। बहुत ऊंची ऊंची बात करते हैं इसलिए सत्संग है, ऐसे भी बात नहीं है। बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बात करते हैं, विषय लेते हैं, इसलिए सत्संग है, ऐसा भी नहीं है। मेरा वर्तमान प्रयोजन सदता है कि नहीं सदता है, मैं जिस योग्यता में खड़ा हूं वहां से एक कदम भी मैं आगे बढ़ता हूं कि नहीं बढ़ता हूं आत्मकल्याण की दिशा में, इसकी पहले नजर होनी चाहिए, सूक्ष्म नजर होनी चाहिए। पर ऐसा सत्संग हो तब तो यथार्थ सत्संग कहा जाता है। सत्संग भी यथार्थ नहीं हो तो असत्संग हो जाएगा, असत्संग से कोई लाभ नहीं है। इसलिए बहुत अच्छी परिभाषा दिया है यहां कि तीर्थंकर ने सत्संग को असंग दशा का आधार कहा है। क्यों? कि ऐसे सत्संग के योग से संयोग स्वरूप भूत ऐसे असंग दशा असंगपना जीव को उत्पन्न हुए। इस प्रकार का सत्संग भी दुर्लभ तो है ही, ऐसा सत्संग सुलभ नहीं है। सत्संग तो बहुत जगह होता है, लेकिन ऐसा सत्संग जो सिर्फ प्रयोजन भूत की चर्चा चले, अप्रयोजनभूत विषय चले तो निषेध आ जाए कि इसको छोड़ो, हमारे पास ऐसा समय नहीं है कि फालतू की बात करें। ऐसा सत्संग मिलना सर्वकाल में दुर्लभ है, तो इस काल में तो दुर्लभ हो ही हुए, फिर भी हमारे अनंत काल जो बीता उस अनंत काल में सत्संग में जीव को बहुत बार प्राप्त हुआ है। जहां यथार्थ सत्संग चलता हो वैसा सत्संग में भी हमारा आना जाना हुआ है, हम गए हैं ना, परंतु वो फलवार नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ है, ये बात जरूर है। वर्तमान स्थिति इसका सबूत है कि भूतकाल के अनंत भोग में बहुत बार हमको यथार्थ सत्संग प्राप्त हुआ है, परंतु वो अभी तक फलवान हुआ नहीं है, अमन के वहां है। मूल सत्संग भी जीव को बहुत बार प्राप्त होने पर भी फलवान हुआ नहीं है, ऐसा श्री वितराग ने कहा है, क्योंकि वो बात तो केवल ज्ञान के हैं। अनंत भाव में कहां कहां कैसे कैसे भटकना हुआ, जाना आना हुआ, ये केवल ज्ञान में आया है और वितराग ने वो बात कही भी है। क्यों नहीं हुआ इसकी चर्चा करेंगे अब, क्योंकि मैं सत्संग को पहचान करके, पहले तो पहचान नहीं आई कि ये यथार्थ है या अयथार्थ है। देखिए हम जाते हैं जहां भी शास्त्र सभा होती है, आना जाना जिसको तत्व ज्ञान की रुचि है, अभ्यास है, उसका आना जाना होता है। लेकिन ये यथार्थ सत्संग है, इसकी पहचान जीव को हुई नहीं कि मेरा आत्म कल्याण अवश्य अवश्य यहां से होगा ही होगा, इस सत्संग से मुझे असंग दशा तक पहुंचना होगा ही, ऐसी पहचान विश्वास के साथ कभी हुई नहीं, उसने पहचान किया ही नहीं। जब उसने पहचान नहीं किया तो क्या किया फिर, कि एक प्रकार का अपने राग का, अपना राग का पोषण किया, क्या किया, एक प्रकार का अपना राग का पोषण किया। इसमें क्या होता है, बहुत विचारणीय प्रश्न है ये। किसी को किसी का व्यक्तित्व पसंद आता है तो उसका संकर लेता है, किसी को किसी की वाणी की शैली पसंद आती है, जिसको वक्तृत्व कला कहते हैं, ऑरेटरी कहते हैं, बोलने की छटा कहते हैं, तो किसी को किसी की छटा पसंद है, किसी को किसी की छटा पसंद है, किसी को बहुत जानकारी पसंद आती है तो कहते हैं कि ये आदमी बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत शास्त्र उसने पढ़ा है, बहुत जानता है, बहुत सी बातें हमें जानने को मिलती हैं इनके पास से, तो कोई जानकारी बढ़ाने के लिए आगे उनके संग में चले जाते हैं। किसी को किसी के बाह्य जीवन जो है उसको कहते हैं बाह्याचरण, ये देखो बात करता है उतनी नहीं है, इतनी कुछ तो खाता ही नहीं, ऐसा ऐसा